अध्याय 45 हमारे बालकों की उचित शिक्षा और अच्छा अनुशासन। वर्तमान संसार का प्रभाव नौजवानों को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति और अपनी इच्छा के अनुसार चलने की ओर प्रेरणा देता है। शैतान एक चालाक, अथक और विनाशकारी दुश्मन है। जब तरुण को कष्ट पहुंचाने के लिए असावधानी से कोई शब्द कहे जावें, चाहे वे उसकी चापलूसी के लिए हों अथवा पाप के प्रति घृणा भाव को हल्का करने के लिए, शैतान उस अवसर से लाभ उठाकर दुष्ट बीज के अंकुरित होने और जड़ पकड़ने में सहायक होता है कि वो फलदायी हो जावे। कई माता पिताओं ने अपने बालकों को गलत आदत बनाने दी है, जिनके निशान उनके समस्त जीवन पर प्रकट होते हैं। इसका दोष माता पिता पर है। ये बालक मसीही होने का दावा तो करें, पर उनकी आदतों के सुधार कार्य के संबंध में हृदय पर अनुग्रह के प्रभाव बिना उनकी विगत आदतें उनके अनुभव में प्रकट होंगी। उनका चाल चलन वही होगा जो उनके माता पिता ने उन्हें बनाने दिया है। माता पिता अपने बच्चों का शासन करें, उनकी अभिलाषाओं को सुधारें, उन्हें वश में रखें, जिसके बिना अपने भयानक क्रोध के दिन परमेश्वर उनको अवश्य नाश करेगा। और वे माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं सुधारा, कदापि निर्दोष नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर के सैनिक विशेषकर अपने बच्चों का शासन करें। मेरा अनुभव है कि अपने घर का शासन किए बिना वे मंडली का न्याय नहीं कर सकते। प्रथम वे अपने घर का उचित प्रबंध करें, तब उनका न्याय आदरणीय ठहरेगा और मंडली पर उनका प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक बालक यदि रात को घर में अनुपस्थित हो तो लौटने पर उसका लेखा दे। माता पिता को यह मालूम होना चाहिए कि वे किस संगति में रहते हैं या संध्या किस परिवार कुटुंब में बिताते हैं। परमेश्वर ने बच्चों से व्यवहार के संबंध में प्रभु यीशु के द्वारा जो बुद्धिपूर्ण योजना बनाई है, उससे बढ़कर किसी मानव के तत्वज्ञान ने नहीं खोज निकाला है। सृजनहार को छोड़ कौन बालकों को अपने लोहू से मोल लिया है? उसके अतिरिक्त कौन उनके हित में अधिक दिलचस्पी ले सकता है? यदि परमेश्वर के वचन का योग्य अध्ययन किया जावे और विश्वास योग्य रूप में माना जावे, तो बालकों की दुष्चरित्रता पर आत्मक्लेश में कमी हो जावेगी। बालकों के कुछ अधिकार हैं जिन्हें माता पिता को जानकर उनका आदर करना चाहिए। उन्हें योग्य शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसके द्वारा वे उपयोगी, सम्मानित, समाज प्रेम के पात्र बनकर आगामी भविष्य के विशुद्ध और पवित्र समाज में अपना स्थान पा सकें। बालकों को अपने वर्तमान और भविष्य दोनों के कल्याण के विषय में शिक्षा देनी चाहिए।
पवित्र वचन के आदर करने और आज्ञाकारी होने का दावा करने वाले अनेक पुरुष स्त्री बहुधा उसके आदर्श मान की पूर्ति में असफल हो जाते। बालकों के प्रशिक्षण में परमेश्वर की प्रकट इच्छा के बदले वे अपनी ही बिगड़ी हुई इच्छा का पालन करते हैं। इस कर्तव्य विमुक्ता के परिणाम स्वरूप हजारों आत्माएं नाश हो जाती हैं। बालकों के उचित शासन हेतु पवित्र वचन में उपयुक्त नियम हैं। परमेश्वर के इन आदेशों के अनुकूल यदि माता पिता शिक्षा कार्य में लग जाते, तो वर्तमान समय में कार्य क्षेत्र में एक भिन्न प्रकार के युवक वर्ग देखने में आता। परंतु बाइबल पढ़ने और उसके आदेशों पर चलने का दावा करने वाले अनेकों माता पिता अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा दे रहे हैं। हम माता पिताओं की दुखमय वाणी सुनते हैं जो अपनी संतान की चाल के कारण विलाप कर रहे हैं। उनको इस बात का तनिक भी बोध नहीं है कि उनके बालकों के विनाश का कारण उनका भ्रमात्मक प्रेम ही है तथा उनके संताप का मुख्य कारण उनकी निश्चिंतता ही है। उनको इस बात का बोध नहीं है कि अपने बालकों को सुयोग्य आदतें बनाने के प्रशिक्षण कार्य का उत्तरदायित्व उनको परमेश्वर की ओर से दिया गया है। मसीही बालक प्रत्येक सांसारिक आशीष की अपेक्षा ईश्वर के भय मानने वाले माता पिता के प्रेम और सम्मान की अधिक लालसा करेंगे। वे अपने माता पिता से प्रेम करते हुए उनका सम्मान करेंगे। अपने माता पिता को किस प्रकार प्रसन्न रखा जाना, ये विषय उनका आजीवन प्रमुख अभ्यास होना चाहिए। इस शासन के लिए उचित प्रशिक्षण नहीं पाया है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य के बोध से अभिज्ञ है। बहुधा देखने में आता है कि उनके माता पिता कितना भी कुछ क्यों ना करें, वे उनके प्रति सदा कृतज्ञता का मान प्रदर्शित करते हैं और उतना ही कम उनका आदर करते हैं। अधिकतर बालकों के भविष्य का आनंद माता पिता अपने हाथ ही में रखते हैं। अपने बालकों के चरित्र निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य उन्हीं के कंधों पर है। बालकपन की दी हुई शिक्षा जीवन पर्यंत उनके साथ रहेगी। माता पिता बीज बोते हैं जो अवश्य अंकुरित होकर भला या बुरा फल लाएगा। वे अपने बालकों को या तो आनंद या दुख के लिए सुसज्जित करते हैं। माता पिता का सहमत होना आवश्यक है। बालक स्वभाव से प्रेमी तथा सूक्ष्मग्राही होते हैं। वे शीघ्र ही प्रसन्न अथवा अप्रसन्न हो जाते हैं। प्रेमी शब्दों द्वारा विनम्र शासन व कामों से माताएं अपनी संतान को हृदयपाश में बांध लेती हैं। बच्चों के साथ कठोर बर्ताव करना भारी भूल है। प्रत्येक कुटुंब अनुशासन में स्थिरता और लालसाहीन प्रतिबंध की भारी आवश्यकता है। जो आपको कहना है धीरज से कहिए, सोच विचार के साथ कदम उठाइए और जो कुछ आप कहें उसे अवश्य पूरा कीजिए। माता पिता अपने बाल्यकाल को न भूलें। आप प्रेम और सहानुभूति की कैसी आकांक्षा करते थे? जब कोई आपकी जांच पड़ताल करते या आपको डांटते थे तो आपको कैसी अप्रसन्नता होती थी? वे अपने मन को बालक सा बनाकर बालक की आवश्यकताओं को समझने का प्रयत्न करें, तो भी प्रेम निश्चित दृढ़ता के साथ अपने बालकों से आज्ञा पालन की आशा करें। माता पिता की बात पूर्ण रूप से देह मानी जावे। कौटुंबिक शासन में ढिलाई का परिणाम हानिकारक है। वास्तव में वह अनुशासनहीनता के अनुरूप है। ये प्रश्न बहुधा पूछा जाता है कि धार्मिक माता पिता की संतान उद्दंड, निडर, अनुशासनहीन क्यों होती है? इस प्रश्न का उत्तर घर का प्रशिक्षण है। यदि माता पिता में मतभेद है तो ऐसे समय वे बच्चों से अलग एकांत में हो जावे जब तक मतैक्य न हो जावे। शासन कार्य में यदि माता पिता एक मन हों तो बच्चे समझ लेंगे कि उनसे क्या आशा की जाती है। यदि पिता के विचार में माता शासन में कठोर हों और यदि पिता अपने शब्द व संकेत से माता के शासन के प्रति उदासीनता प्रकट करे व माता के व्यवहार के विपरीत वह बच्चों को लाड़ दुलाड़ दिखावें तो बालक का जीवन नष्ट हो जाएगा। बालक शीघ्र जान लेगा कि वह अपनी मनमानी कर सकता है। जो माता पिता इस प्रकार व्यवहार के द्वारा बालकों के प्रति पाप करते हैं वे इन आत्माओं के विनाश के उत्तरदायी हैं। पहले माता पिता अपने आप को वश में रखना सीखें, तब जब वे अपने बालकों को भली भांति वश में रख सकेंगे। जब वे स्वयं आत्मसंयमी न होकर अधीर होकर बात या कार्य करते हैं तो वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। पहले वे अपने बालकों के साथ वार्तालाप करके उनकी भूल उन पर प्रकट कर उनका पाप दिखलाकर उन्हें बतलाएं कि ऐसा करके उन्होंने माता पिता के विरुद्ध नहीं वरन परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप किया है। अपने बालकों को सुधारने के पूर्व अपने हृदयों को दया और दुख से विनम्र करके प्रार्थना की जाए, तब आपके शासन के फलस्वरूप आपकी संतान आपसे घृणा नहीं करेंगे, वे आपसे प्रेम करेंगे। वे इस बात को समझेंगे कि आपने अपने बालकों की ताड़ना इसलिए नहीं की है कि उन्होंने आपको अड़चन में डाला है या आप अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना चाहते हैं, पर ये आपका कर्तव्य है जो उनकी भलाई के लिए है, जिससे वे पाप में बढ़ने के लिए छोड़ न दिए जावें। अति निष्ठुर प्रशिक्षण का भय। अनेकों कुटुंबों में बालक जब तक अनुशासन के अंतर्गत रहते हैं अपने आप को प्रशिक्षित बतलाते हैं, पर उनको शासित रखने की प्रणाली का ज्यों ही अंत हो या वे नियम ज्यों ही उनकी आंखों से ओझल हो जावे, वे स्वयं विचार या कार्य के लिए फैसला करने के लिए अयोग्य ठहरते हैं। जब तरुण ऐसे कठोर प्रशिक्षण में हों जिसमें उसको अपनी मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा अपना फैसला करने की योग्यता प्रदर्शित करने का अवकाश न हो, जिससे उसकी विचार शक्ति, भावना व आत्मसम्मान की उन्नति या किसी कार्य को पूरा करने की कार्यक्षमता पर विश्वास की बढ़ती न हो, तो इससे केवल मानसिक और नैतिक शक्ति का अपहरण ही होगा। जब वे संसार के समक्ष व्यावहारिक क्षेत्र में प्रवेश करें तो वे इसी बात को प्रकट करेंगे कि उनका प्रशिक्षण जानवरों की भांति हुआ है, उन्हें शिक्षा नहीं दी गई है। उनकी इच्छाओं की अगुवाई करने के बदले माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा उनको कठोर शासन के दबाव में रखा गया है। ऐसे माता पिता व शिक्षक जो अपने अधीन रहने वाले बच्चों के मन एवं इच्छा के ऊपर पूरा अंकुश लगाने का दावा करते हैं, यदि वे उन बालकों के भविष्य जीवन पर जिनको दबाव में रखा गया है दृष्टिपात करें तो वे डींग मारना भूल जाएंगे। वे बालक जीवन के निष्ठुर उत्तरदायित्व में योग देने के लिए तैयार न होंगे। वे शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों की इच्छाओं को पूर्ण रीति से वश में रखने का दावा करते हैं सफल शिक्षक नहीं है, यद्यपि वह उस समय सराहनीय मालूम होता है। वे बहुधा अपने आप को परांगमुख रखकर उदासीन सहानुभूति रहित रहते हैं, जिससे वे अपने बालकों और विद्यार्थियों के हृदयों को जोत नहीं सकते। यदि वे बालकों को अपने समीप एकत्रित करें और यह बतलाकर कि उनको उनसे प्रेम है उनके खेल कूदों में संभागी हों, कभी कभी बालकों में बालक बनकर वे अपने बालकों को हर्षित करके उनके प्रेम तथा विश्वास को जीत लेंगे। बालक भी अपने माता पिता के अधिकार के प्रति अपना प्रेम और आदर करेंगे। दूसरी ओर बालकों को अपने माता पिता व शिक्षक के न्याय से स्वतंत्र भी नहीं छोड़ना चाहिए। बालकों को शिक्षा दी जावे कि वे अपने माता पिता और शिक्षकों के फैसले का आदर करें। बालकों को शिक्षा दी जावे कि माता पिता और शिक्षकों की सलाह को महत्व देने से उनके मन संगठित हो जावेंगे। जब वे अपने माता पिता तथा शिक्षकों के हाथों से बाहर आगे बढ़ें तो उनका चरित्र सरकंडे की भांति न होंगे जो हवा से हिलाया जा रहा हो। बालकों को अज्ञानता में बढ़ने देना पाप है। अनेकों माता पिता अपने बच्चों के आत्मिक तथा स्कूल संबंधी शिक्षा से निश्चित रहते हैं, इनसे निश्चित नहीं रहना चाहिए। बालकों के मन कार्यशील रहते हैं, यदि उनके मन शारीरिक परिश्रम या अध्ययन कार्य में ना लगाए जावे तो वे दुष्ट प्रभाव के वश में आ जाएंगे। अपने बालकों को अज्ञानता में बढ़ने देना पाप है। वे उन्हें उपयोगी तथा मनोरंजक पुस्तकें दें, शारीरिक श्रम का महत्व बतलाकर श्रम के लिए अवकाश निकालें, पढ़ने का भी समय रखा जावे, माता पिता बालकों के मानसिक विकास का विशेष ध्यान रखें कि उनकी मानसिक इंद्रियों को बढ़ावें। यदि मन को निश्चल व स्वतंत्र छोड़ दिया जावे तो वह निम्न व गंदी बातों की ओर प्रवृत्त होगा। शैतान को अवसर मिलेगा कि सुस्त मनों को काम में लावे। माता का कार्य शिशु से आरंभ होता है। वो बालक की इच्छा व स्वभाव को वश में रखकर उसे आज्ञाकारी बनना सिखावे। ज्यों-ज्यों बालक बढ़े हाथ ढीला न पड़े। समय निकालकर माता बालक से बातचीत करके उसकी त्रुटियां सुधार कर धीरज सहित उचित मार्ग में उसकी अगुवाई करें। मसीही माता पिताओं को जानना चाहिए कि वे बालकों का शिक्षण इस प्रकार कर रहे हैं कि वे परमेश्वर की संतान, बालकपन में जो शिक्षा दी जावे उसी पर बालक का धार्मिक अनुभव निर्भर रहता है। कठिन हो जावेगा अनुशासनीय इच्छा को परमेश्वर के परिणाम के अनुसार ढालना कैसा कठिन है, क्या भारी संग्राम है। इस महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता दर्शाने हारे माता पिता बेचारे बालकों के विरुद्ध पाप करते हुए ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। माता पिताओं, परमेश्वर ने आपको बालकों के प्रशिक्षण का जो उत्तरदायित्व सौंपा है, यदि आप उसमें असफल हों तो इसके परिणाम का उत्तरदायित्व आप ही पर है। इनके परिणाम आपकी संतान ही में सीमित न होंगे। जिस प्रकार यदि एक कंटीली झाड़ी को खेत में रहने देने से कुछ दिनों में खेत में उसकी फसल पैदा हो जावेगी, इसी प्रकार पाप के प्रति आपकी उदासीनता के फलस्वरूप जो भी उसकी सीमा में आए उनका निश्चय विनाश होगा। अविश्वासी माता पिता पर परमेश्वर का श्राप होगा। वे ऐसे कांटे ही नहीं रोप रहे हैं जो उनको यहां फंसा लें, पर वे न्याय आसन के समक्ष अपने अविश्वास को अपने सामने देखेंगे। न्याय के दिन कई बालक उठकर अपने माता पिता पर यह दोष लगावेंगे कि उनके विनाश का दोष उन पर है, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। अंधे प्रेम और झूठी सहानुभूति के वश में होकर माता पिता अपने बच्चों के अपराधों को क्षमा करके उनका सुधार नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों का नाश होता है और उनके लोहू का पलटा अविश्वासी माता पिता से लिया जावेगा। आलस्य की बुराई। मुझे यह बतलाया गया है कि सुस्ती के परिणाम स्वरूप कितने पाप पैदा होते हैं। कार्य व्यस्त हाथ और मस्तिष्क को अवकाश नहीं कि दुश्मन द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं पर विचार करें। आलसी हाथ और मस्तिष्क तैयार हैं कि शैतान उन पर अधिकार जमा लें। मन यदि उचित कार्यों में लगा न हो तो अनुचित बातों में विचारता है। माता पिता अपनी संतान को सिखलाने की आलस से पाप हैं। बालकों पर से कार्य का भार उठाकर उन्हें के लिए छोड़ देने से बढ़कर कोई अन्य बात नहीं है जो उनके पतन का बड़ा कारण हो सके। बालकों के मन चंचल होते हैं। यदि वे उत्तम और लाभदायक बातों में व्यस्त न रहें तो निश्चय वे बुराई की ओर अग्रसर होंगे। उनके लिए मनोरंजन का होना तो आवश्यक है, पर उन्हें काम करना सिखलाया जावे। उनके लिए शारीरिक श्रम के अवसर हों, जिनके साथ साथ पढ़ने का भी अवसर हो। ध्यान में रहें कि उनकी अवस्था के अनुसार उनका कार्य हो, और पुस्तकें जो दी जावें वे लाभप्रद तथा मनोरंजक हों। बालक बहुधा किसी कार्य को बड़े जोश से आरंभ करते हैं, बाद में वे उसमें चिंतित होकर घबरा जाते हैं। वे चाहते हैं उसे बदलकर कोई अन्य कार्य ले लें। इस प्रकार संभव है कि वे अनेकों बातों में हाथ लगाकर निराशा का सामना करने पर उन्हें छोड़ दें। इस प्रकार वे एक बात से दूसरी पर कूदें और किसी कार्य को सिद्ध न कर सकें। माता पिता सावधान रहें कि बदलाव की अभिलाषा से उनकी संतान प्रभावित न हो। वे अनेकों ऐसी बातों से कस न जावें जिसके फलस्वरूप वे अपने प्रगतिशील मस्तिष्क का धैर्यपूर्ण शासन न कर सकें। जब वे निराशा का सामना करें तो तसल्ली के एक शब्द को उचित समय पर कहने से उनकी भारी सहायता हो सकेगी। इससे उन्हें अमुक कार्य को पूरा करने का आनंद प्राप्त होगा और दूसरा कठिन कार्य हाथ में लेने की प्रेरणा भी मिलेगी। जिन बच्चों को अधिक लाड़ दुलाड़ से पाला गया है और उनकी सारी इच्छाएं पूरी की गई हैं, वे सदा इसी प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं। जब उनकी आशाओं पर पानी फिर जाता है तो वे निराश हो जाते हैं। ये मनोभाव जीवन पर उनके साथ होता है। वे सदा असहाय रहकर दूसरों की सहायता की बाट देखकर चाहेंगे कि दूसरे सदा उनका विरोध किया जावे, तो सियाने होने पर भी वे सोचते हैं कि उनका अपमान किया गया है। इस प्रकार वे संसार में फिक्र करते रहते हैं और अपना निज भार उठाने में असमर्थ होते हैं। इस कारण कि संसार की प्रत्येक बात उनके अनुकूल नहीं है, वे सदा कुरकुराते रहते हैं। जब कोई स्त्री अपना और अपने परिवार का भी काम करती है, अर्थात लकड़ी पानी लाती और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर चूल्हे के लिए लकड़ियां काटती है, जबकि पति तथा पुत्र आग के पास बैठकर मौज करते हैं, तो वो ऐसी कार्यवाही से अपने को तथा परिवार को भारी नुकसान पहुंचा रही है। परमेश्वर का ये अभिप्राय नहीं था कि पत्नियां घर के गुलाम हों। जब बालकों को घर के काम में भाग लेने की शिक्षा ना दी जावे तो मां पर चिंता का अधिक भार रहता है। इसके परिणाम स्वरूप जल्दी बूढ़ी होकर समय के पूर्व मर जाती है। जब बालकों को माता की अधिक आवश्यकता हो तब वो उन्हें छोड़कर चल बसती है। इसका दोष किस पर हो? पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को चिंताओं में फंसने से बचाने का भरसक प्रयत्न करें। वो उसे सदा प्रसन्नचित रखें। बालकों को आलसी बनने का अवसर ना दिया जावे, क्योंकि इसकी आदत जल्दी बन जाती है। माता पिता अपने बच्चों को मसीह तक लाने का प्रयत्न कीजिए। बच्चे कदाचित भला यत्न करना चाहें, अपने माता पिता व संरक्षक के प्रति आज्ञापालन और दयालुता की भावना उसमें हो, पर तो भी उन्हें प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होगी। उनके संकल्प तो भले हों, पर जब तक उनके सिद्धांतों का धर्म द्वारा समर्थन नहीं अथवा उनके जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह के नवीनीकरण का प्रभाव ना हो तो वे आदर्शमान तक पहुंचने में असमर्थ होंगे। अपने बालकों के उद्धार संबंधी प्रयत्नों को माता पिता दुगना कर दें। बच्चों को अपनी शिक्षा का प्रबंध अपने हाथ से करने को छोड़ा न जावे, पर माता पिता विश्वास योग्य होकर उनको सिखलावें। ये समझकर कि भविष्य में सब ठीक होवेगा, बिना सोचे समझे बालकों को अपना भला बुरा छाटने को न छोड़ दिया। भलाई की अपेक्षा बुराई अधिक तीव्रता से बढ़ेगी। जब बालक छोटे ही हैं तभी माता पिता शासन कार्य आरंभ कर दें कि जिससे अंत में मसीही बन जावें। आपके समस्त प्रयत्न उसके उद्धार के लिए हों। ऐसा दिखाइए कि मानो वे आपकी देखरेख में इसलिए रखे गए हैं कि वे परमेश्वर के राज्य में बहुमूल्य रत्नों की भांति चमक सकें। ऐसी गलत धारणा के आधार पर कि अभी तो वे दायित्व उठाने, अपने पापों से पश्चाताप करने तथा मसीह को स्वीकार करने की आयु को नहीं पहुंचे हैं, आप सावधान हो जाइए कि कहीं आप उनको विनाश के गढ़े के ऊपर तो नहीं सुला रहे हैं। माता पिता अपने बालकों के समक्ष जब उद्धार की योजना का वर्णन करें तो उसे ऐसी सरल साधारण भाषा में करें कि वे समझ सकें। 8, 10 और 12 वर्ष की आयु के बालक इस योग्य है कि उनसे व्यक्तिगत धर्म की बात की जावे। बालकों को यह शिक्षा न दी जावे कि वे किसी भविष्य काल में बड़े होकर पश्चाताप करें। यदि उचित रूप से शिक्षा दी जावे तो छोटे बालकों को भी अपनी असल पापमय दशा का तथा मसीह यीशु द्वारा मोक्ष मार्ग का सही ज्ञान हो सकता है। धर्माध्यक्ष अक्सर बालकों के त्राण की ओर से उदासीन रहते हैं और इस विषय को व्यक्तिगत महत्व नहीं देते हैं। इस प्रकार बालकों के मन को प्रभावित करने का स्वर्ण अवसर बहुधा उन्नति किए बिना खो जाता है। माता पिताओं, आप पर जो उत्तरदायित्व है, क्या आपको आपके बच्चों की आलस्यमय नैतिक पतनशील आदतों से रक्षा करने की आवश्यकता का बोध है? अपने बालकों को उसी संगति में रहने दीजिए, उनके चाल चलन पर उत्तम प्रभाव पड़े। जब तक आपको मालूम न हो कि संध्या को आपके बच्चे कहाँ जाते व क्या करते हैं, उन्हें मत जाने दीजिए। नैतिक शुद्धता के प्रति उनको शिक्षित कीजिए। यदि आपने आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, कहीं थोड़ा तहीं थोड़ा की शिक्षा देने में लापरवाही की हो तो एकदम आरंभ करके कर्तव्य पालन कीजिए। अपने उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेकर वर्तमान समय और अनंत काल के लिए काम में लग जाइए। अपने बच्चों के सामने अपनी लापरवाही का आज ही इकरार कीजिए। आज ही उनको बतलाइए कि परमेश्वर की ओर से सौंपे हुए कार्य को वे अभी आरंभ करेंगे। उनसे कहिए कि भूल सुधार के प्रति बुद्धिमानी से कदम उठाएं। लौदीकियों की मंडली की हालत में और अधिक समय ना रहिए। परमेश्वर के नाम में मैं हर परिवार से निवेदन करती हूं कि आप बतलाइए कि आप किसके पक्ष में हैं। अपने निज घर की मंडली का संशोधन कीजिए। मानसिक आवश्यकताओं की अपेक्षा मत कीजिए। मुझे बतलाया गया है कि परमेश्वर का भय मानने वाले माता पिता अपने बच्चों पर अंकुश लगाते हैं। उन्हें अपने संतान की मनोवृत्तियों तथा प्रवृत्तियों को पहचान कर उनको आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। अनेकों माता पिता अपने संतान की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनको रुग्ण अवस्था में वे विनम्र भाव से उनकी सेवा संभाल करके यह समझते हैं कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया। यहां वे भूल करते हैं, ये तो उनके कार्य का आरंभ मात्र है। उनकी मानसिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। घायल मन को अच्छा होने के लिए उपयुक्त उपचार की आवश्यकता है। जिस प्रकार सियानों के समक्ष परीक्षाएं अपना विकराल रूप लेकर आती हैं, उसी प्रकार बालकों के समक्ष भी ऐसी परीक्षाएं आती हैं जिनका सहना उनके लिए कठिन है। बहुधा माता पिता को इसका कम ध्यान रहता है। बहुधा उनके मन व्याकुल रहते हैं। वे भ्रमात्मक दृष्टिकोण तथा मनोवेग के उत्तरगत परिश्रम करते हैं। शैतान उनको घूसा लगाता है और वे उसकी परीक्षाओं में फंस जाते हैं। वे कभी कभी चिड़चिड़ेपन का अन्यायपूर्ण भाव दर्शाते हैं। बेचारे बच्चे भी इसी आत्मा में संभागी होते हैं और माता पिता उनकी सहायता नहीं करते। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बिगड़ गया। उनके चारों ओर चिड़चिड़ापन है। उनके लिए दयनीय और दुख का समय है। माता पिता अपनी संतान पर दोष लगाकर कहते हैं कि वे अनाज्ञाकारी तथा उदंड हैं। वे संसार में सबसे खराब हैं। इसके लिए तो माता पिता ही दोषी हैं। कतिपय माता पिता आत्मनियंत्रण के अभाव में कई तूफान उठाते हैं। दयामय शब्दों में बच्चों से ये या वो काम करने के बदले वे धमकियां देकर आज्ञा देते हैं। उनके ओठों पर गुड़ दोष या झिड़की बनी रहती हैं, जिसके योग्य वे बालक नहीं हैं। पिता माताओं, आपकी संतान के प्रति ये व्यवहार उनको आज्ञाओं और आननत को नाश कर देता है। वे आपकी आज्ञा पालन तो कर रहे हैं, प्रेम से नहीं, पर इसलिए कि इसके विपरीत वे कर नहीं सकते। इस बात में उनका मन नहीं है। आनंद के बदले उसमें रुखापन है। इसका परिणाम ये होता है कि वे आपके आदेशों का पालन नहीं करते, आप और भी चिढ़ जाते हैं, जो बच्चों के हित में और भी बुरा है। दोषारोपण को बार बार दोहराते हुए उनके सारे दोष क्रम से उनके सामने प्रदर्शित किए जाते हैं। आपके बच्चे आपको भ्रिकुटी चढ़ाए हुए न देखें। यदि बालक परीक्षा में गिरकर अपनी भूल पर पश्चाताप कर लें, तो उनको ऐसे ही उदारचित्त होकर क्षमा कीजिए, जिस प्रकार आप अपने स्वर्गीय पिता से क्षमा किए जाने की आशा करते हैं। दयालु भाव से उन्हें शिक्षा दीजिए और उन्हें अपने हृदयपाश में आपसे बालकों को पृथक करने के हेतु उनके चारों ओर प्रभाव पर प्रभाव डाले जाएंगे, परंतु आपको उन सब का प्रतिरोध करना होगा, जिसकी प्रतिक्रिया के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। उनको शिक्षा दीजिए कि वे आप पर विश्वास करें, उनके आनंद या परीक्षा का समाचार प्राप्त करने के लिए उन्हें उकसाइए। ऐसा करने से आप उनके अनुभवहीन पांवों को इस फंदों से बचाइएगा जो शैतान ने उनके लिए तैयार किए हैं। अपने बाल्यकाल को भूलकर अपने बालकों के साथ सदैव निष्ठुर व्यवहार न कीजिए। यह जानिए कि वे बालक ही हैं, उन्हें एकदम सिद्ध पुरुष या स्त्रियों समान व्यवहार करने वालों के समान बनाने का प्रयत्न न कीजिए। ऐसा करने से आप अपने लिए उनके हृदय का प्रवेश द्वार बंद कराइएगा और वे अपना हृदय हानिकारक बातों के लिए खोलेंगे, दूसरे आकर उनके हृदय को दूषित कर देंगे। गुस्से में बालक की ताड़ना न कीजिए। यदि आपकी संतान अनाज्ञाकारी है तो उन्हें सुधारिए। उनके सुधारने के पहले एकांत में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह बालक के हृदय को विनम्र बनाने और आपको उनके साथ व्यवहार करने की सद्बुद्धि दें। मैंने किसी भी अवसर पर इस सलाह को असफल नहीं देखा है। जब माता पिता का मन क्रोध से भरा है, तब आप बालकों से यह आशा नहीं कर सकते कि वे आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देंगे। प्रेम से अपनी संतान को सुधारिए। आपको उस हृदय तक उन्हें मनमानी नहीं करने देनी चाहिए कि गुस्से में आकर उन्हें सजा देनी पड़े। ऐसी ताड़ना से भलाई के विपरीत बुराई को बढ़ाना है। ऐसा करने से बालक की बुरी भावनाएं जागृत होती हैं, जिसके फलस्वरूप वो ये समझता है कि आपको उसकी चिंता नहीं है। वो अपने आप में तर्क करता है कि यदि आपको उसकी चिंता होती तो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार न करते। क्या आपका ये विचार है कि आप अपने बालकों को ताड़ना जैसी चाहे वैसी करें और परमेश्वर को उसकी परवाह नहीं? वो जानता है और ये भी जानता है कि यदि आप बिगाड़ने के बजाय जीतने के उद्देश्य से उसकी ताड़ना करते तो उन बालकों को ही शुभ परिणाम निकलते। बालकों के साथ सच्ची विश्वास योग्यता का महल। माता पिता को सत्यता का आदर्श बनाना चाहिए, क्योंकि बालक के हृदय को प्रभावित करने वाला ये दैनिक पाठ है। जीवन के हर पहलू में, विशेषकर बालकों की शिक्षा में, निश्चल सिद्धांत माता पिता के शासन करता है। बालक के कार्य पवित्र अथवा सही हैं, वो अपने कार्यों ही से पहचाना जाता है। एक माता जिसमें दूरदर्शिता का अभाव है, जो परमेश्वर के मार्गदर्शन का अनुकरण नहीं करती, उनको ऐसी शिक्षा देगी कि वे धोखेबाज और कपटी बन जावें। वे स्वाभाविक गुण जिनसे अनुराग है, अंत में इतने परिपक्व हो जाते हैं कि झूठ बोलना इतना प्राकृतिक बन जाता है जैसे सांस लेना। ईमानदारी और सच्चाई का स्थान छल ले लेगा। यह अति आवश्यक है कि माता के जीवन की प्रत्येक बात में ईमानदारी का व्यवहार हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों अथवा तरुणों को शिक्षा दी जावे कि किसी भी छोटी बात में किसी प्रकार छल झूठ का स्थान न दिया जावे। चरित्र विकास का महत्व। परमेश्वर ने माता पिता को यह काम सौंपा है कि वे ईश्वरीय आदर्श के अनुकूल बच्चों का चरित्र निर्माण करें। उसके अनुग्रह की सहायता से वे यह कार्य संपन्न कर सकेंगे। बालकों की लालसाओं पर अंकुश लगाने में तथा इच्छा की अगुवाई देने के कार्य में बड़ी सहनशीलता, स्थिरता, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी। यदि खेत को लापरवाही से छोड़ दिया जाए तो उसमें कांटे ही उगते हैं। वह जो उपयोगिता और सुंदरता की फसल काटना चाहते हैं, उन्हें पहले खेत को तैयार करके बोना चाहिए। कटीली जड़ खोदिए, भूमि को नरम बनाइए, तब बहुमूल्य पौधा बनकर फलदायी होकर आपको मेहनत का फल देगा। चरित्र निर्माण ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो मनुष्य जाति को सौंपा गया है। आजकल इसके अभ्यास में जितना जोर दिया जा रहा है उतना और किसी समय नहीं दिया गया था। भूतकाल में इन महत्वपूर्ण बातों की ओर किसी पीढ़ी का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था। वर्तमान काल में जो भय तरुणों के समक्ष उपस्थित है उतने किसी अन्य समय में नहीं थे।
चरित्र का बल दो बातों पर निर्भर है, इच्छा शक्ति और आत्मानुशासन की शक्ति पर। कई युवक चरित्र के बदले निरंकुश अभिलाषाओं को स्थान देते हैं। सच तो ये है कि जो अपनी लालसाओं के वश में आ गया वो दुर्बल व्यक्ति है। किसी मनुष्य का बड़प्पन का मापदंड ये है कि उसमें अपनी भावनाओं के वशीकरण की कितनी शक्ति है, न कि इसमें कि वो अपनी भावनाओं के वशीभूत हो जावे। बली तो वो है जो गाली का सूक्ष्मग्राही होकर भी अपने मनोवेगों को वश में रखकर अपने दुश्मन को क्षमा कर दे। ऐसे पुरुष वास्तव में वीर है। अपने भविष्य के संबंध में बहुत कम ज्ञान होने के कारण बहुत लोग बौने और संकीर्ण ही रह जाते हैं, परंतु जब परमेश्वर की दी हुई शक्ति का उपयोग करेंगे तो वे एक सर्वोत्तम चरित्र का निर्माण करके इतने प्रभावशाली होंगे कि मसीह के लिए अनेकों आत्माओं को जीत सकेंगे। ज्ञान ही शक्ति है, पर हृदय में भलाई के बिना मानसिक ज्ञान शैतान के लिए शक्ति है। परमेश्वर ने हमें मानसिक और नैतिक शक्ति दी है, पर अधिकांश रूप में प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना चरित्र निर्माण करता है। इस इमारत का निर्माण कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सावधान रहें कि हम किस प्रकार बनाते हैं, हम सचेत रहें कि हमारी नींव अनंत चट्टान पर हो। समय आता है जब हमारा कार्य प्रकट होगा कि वो किस प्रकार का है। अभी अवसर है कि हम परमेश्वर द्वारा दी हुई शक्ति को बढ़ाने में अग्रसर हो जावें, जिससे वे इस काल में और भविष्य में उच्चतर सेवा के उपयुक्त होने के निमित्त चरित्र निर्माण कर सकें।
हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना ही महत्वहीन क्यों न हो, हमारे चरित्र को प्रभावित करता है। सांसारिक धन की अपेक्षा सचरित्र अति मूल्यवान है। चरित्र निर्माण कार्य मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है। वातावरण से वशीभूत होकर जिस चरित्र का निर्माण होता है वह समलय न होकर परिवर्तनशील है। ये तो कई विरोधात्मक बातों का जमाव ही है। जिसमें इस प्रकार का चरित्र हो वह जीवन में उच्च लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों को ऊंचे स्तर पर उठाने में वे प्रभाव रहित हैं, शक्तिहीन और अभिप्रायहीन हैं। जीवन का जो छोटा सा काल हमको मिला है उसे हम बुद्धिमानी से उन्नत करें। परमेश्वर चाहता है कि उसकी मंडली जागृत भक्तिभाव से परिपूर्ण और कार्यशील मंडली हो। हमारे लोग सामूहिक रूप में इस आदर्श से बहुत दूर हैं। परमेश्वर बली, साहसी, कार्यशील तथा जागृत मसीहियों को बुलाता है कि वे सच्चे नमूने का अनुकरण कर परमेश्वर और सत्य के लिए संसार को निश्चित रूप से प्रभावित करें। परमेश्वर ने अति महत्वपूर्ण गंभीर सत्य अपनी थाती के रूप में हमको सौंपा है। हम इससे अपने जीवनों व चरित्रों को प्रभावित होने दें। माता पिता को ईश्वरीय अगुवाई को अत्यधिक आवश्यकता है।
आत्मा हानि बिना आप अपने बालकों के प्रशिक्षण से उदासीन नहीं हो सकते। उनका दूषित चरित्र आपके अविश्वासीपन को प्रकाशित करेगा। बालकों को कठोर, अश्लील आचरण, अनाज्ञाकारिता, अनादर, आलस्य तथा उपेक्षा जैसे दुर्व्यवहारों के सुधार में यदि आप ढिलाई डालें तो इससे आपका अनादर होगा और आपके जीवन में कटु अनुभव होगा। आपकी संतान का भाग्य अधिकतर आपके हाथों में है। यदि आप अपने कर्तव्य में असफल हों तो आप उन्हें शैतान की सेना में सम्मिलित होने देंगे, जिससे वे दूसरों के विनाश के भी साधन बनेंगे। इससे विपरीत, यदि आप उनको शिक्षा देने में विश्वास योग्य रहें और अपने जीवन को आदर्शमय बनाकर ईश्वरीय नमूना दें तो आप उनको मसीह तक पहुंचाएंगे और वे भी दूसरों पर अपना प्रभाव डालेंगे और आपके द्वारा अनेकों आत्माएं बचाई जाएंगी। परमेश्वर चाहता है कि बालकों के साथ हमारा व्यवहार साधारण हो। ये संभव है कि हम भूल जाएं। इन बालकों को हम जैसा अनुभव प्राप्त करने का सुअवसर नहीं मिला है।
यदि ये बालक ठीक हमारे विचारानुसार व्यवहार नहीं करते तो हमारे समाज से उनको डांटना चाहिए, पर ऐसा करने से सुधार नहीं होगा। उन्हें उद्धारकर्ता के पास ले चलिए, उसे सब कुछ बतलाकर ये विश्वास रखें कि उसकी आशीष उन पर होगी।
प्रार्थना समय का आदर करने के महत्व पर बालकों को शिक्षा दी जावे। कार्य आरंभ करने से पहले कुटुंब एक स्थान पर एकत्रित हों, फिर पिता अथवा उसकी अनुपस्थिति में माता परमेश्वर से उत्साह के साथ विनती करें कि वो दिन भर उनकी रक्षा करें। अपने और अपनी संतान के समक्ष आने वाली परीक्षाओं के भय को स्मरण रखते हुए विश्वास के साथ उसकी वेदी के सम्मुख संगठित रूप में उनमें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। जिन बालकों को इस प्रकार परमेश्वर के लिए समर्पित किए गए हैं, उनकी रक्षा उसके दूत करेंगे। मसीही माता पिता का ये कर्तव्य है कि प्रतिभोर और संध्या काल प्रार्थना और विश्वास के साथ अपने बालकों के चारों ओर बाड़ा बांधें। बड़े धीरज से दयामय भाव में निरंतर उन्हें शिक्षा दी जावे कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार जीवन बिताएं। अपने बालकों को सिखाइए कि प्रतिदिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना हमारा विशेष अधिकार है। मसीह अपना अभिप्राय पूरा करने में आपको अपना सहकारी हाथ समझें। प्रार्थना के द्वारा आपको अनुभव प्राप्त होगा कि बालकों की सेवा में वो आपको सफल बनाएगा।
माता की प्रार्थना की शक्ति का जितना भी अंदाज लगाया जाए, सब थोड़ा ही है। वो माता जो अपने पुत्र व पुत्री के बालपन में उसकी परिवर्तनशील परिस्थिति एवं जवानी के खतरों के समय उसके पास घुटने टेकती है, उनके जीवन में उसकी प्रार्थना के प्रभाव को सफलता का बोध न्याय के दिन तक न होगा। यदि वो अपने विश्वास को परमेश्वर के पुत्र से जोड़ ले तो माता का नम्र हाथ पुत्र को परीक्षा के समय बचा सकेगा एवं अपनी पुत्री को पाप में गिरने से रोकेगा। जब लालसा प्रबल होने के लिए युद्ध करती है, तब प्रेम की शक्ति रोकने की तत्परता माता का निश्चयात्मक प्रभाव सत्य के प्रति आत्मा को ठीक भाग पर संतुलित रखेगा। बालकों के प्रति जब आपने अपने कर्तव्य को विश्वास योग्य रूप में निभाया है, तब उनको परमेश्वर के समीप लाकर उससे आशीष मांगिए। उससे कहिए कि आपने अपना भाग पूरा किया है, और तब आप विश्वासी होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो अपना कार्य पूरा करें जो आपकी सामर्थ्य से बाहर है। उससे प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके स्वभाव नम्र और दीन बनाए जाएं। वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रेम पूर्वक देगा। अपने पवित्र वचन के द्वारा उसने आपको चेताया है कि आप अपनी संतान को ताड़ना करें कि उनके रोने के कारण उनको दंड से मुक्त न रखे। इन बातों में उसके वचन का पालन होना चाहिए। सौजन्यता और आदर भाव सिखलाइए। परमेश्वर का आदेश है कि बूढ़ों का आदर करें। उसने कहा है, पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्रसन्न होते हैं।
इनसे प्रकट होता है कि युद्ध किए गए हैं, विजय पाई गई है, बोझ उठाए गए हैं, परीक्षाओं का सामना किया गया है। इससे प्रकट है कि थकित पग अब विश्राम के निकट है, उनका स्थान अब खाली होने को है। बालकों को यह समझने में उनकी सहायता कीजिए। वे आदरमय और सौजन्य व्यवहार से उनके मार्ग को कष्ट रहित बनाकर उनके आज्ञाकारी होकर अपने युवा जीवन में अनुग्रह और सुंदरता बढ़ाएंगे। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदरमान करना। लैव्य व्यवस्था 16 आयत 32। सौजन्यता भी आत्मा का एक अनुग्रह है जिसे सबको अपनाना चाहिए। इसकी शक्ति से स्वभाव नर्म बन जाते हैं जो इसके अभाव में कठोर और खुरदुरे होते हैं। वे जो मसीह के अनुगामी होने का दावा करते हैं और कटु एवं कठोर, दयाहीन व अशिष्ट हैं, तो उन लोगों ने मसीह को नहीं जाना है। उनकी विश्वस्तता और धार्मिकता संदेहात्मक हैं। तो भी विश्वास योग्यता और धार्मिकता, दयालुता और सौजन्यता से रिक्त की पूर्ति नहीं कर सकते।